says Srila Prabhupada. Translation: intelligent persons who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me in devotional service. They are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. Purport: birth, death, old age and disease affect this material body but not the spiritual body. There is no birth, death, old age and disease for the spiritual body. So one who attains a spiritual body becomes one of the associates of the Supreme Personality of Godhead and engages in eternal devotional service is really liberated. Aham Brahmasmi, I am spirit. It is said that one should understand that he is Brahman, spirit soul. This Brahman conception of life is also in devotional service, as described in this verse. The pure devotees are transcendentally situated on the Brahman platform and they know everything about transcendental activities. Four kinds of impure devotees who engage themselves in the transcendental service of the Lord achieve their respective goals. And by the grace of the Supreme Lord, when they are fully Krishna conscious, they actually enjoy spiritual association with the Supreme Lord. But those who are worshippers of the demigods never reach the Supreme Lord in his supreme planet. Even the less intelligent Brahman realized persons cannot reach the supreme planet of Krishna known as Golok Vrindavan. Only persons who perform activities in Krishna consciousness, Mam Ashrita, are actually entitled to be called Brahman because they are actually endeavoring to reach the Krishna planet. Such persons have no misgivings about Krishna and thus they are factually Brahman. Those who are engaged in worshipping the form or archa of the Lord and who are engaged in meditation on the Lord simply for the liberation from material bondage also know by the grace of the Lord the purports of Brahman, Adi Bhut, etc., as explained by the Lord in the next chapter. Om Ajnanati Mirandasya Jnanan Janan Salapaya Chakshur Amrita Melam Tasmai Sri Guru Namah Shri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Yena Kulay Swayam Roop Kadamayam Dadati Swamadati Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Mutile Shimate Bhakti Vikas Swamiti Namne Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Mutile Shimate Bhakti Vedanta Swamiti Namne Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachalane Nirmisheshunyavadi Paschat Desetanye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gauravaktavilla Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna. So, हम इस अध्याय में हमने देखा कि अलग अलग तरह के उपासक होते हैं, अलग अलग तरह के वर्शिपर्स होते हैं. चार तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं और डेमीगॉड वर्शिपर्स को देखा, फिर इम्पर्सनलिस्ट को देखा, है ना. चार ऐसे लोगों को देखा जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं. अभी ये जो श्लोक है, अभी इसमें एक प्रश्न है कि ये श्लोक शुद्ध भक्ति को बता रहा है कि नहीं बता रहा है. अगर शुद्ध भक्ति को बता रहा है तो क्यों बता रहा है, और शुद्ध भक्ति को नहीं बता रहा है तो क्यों नहीं बता रहा है, है ना. तो ध्यान से सुनिएगा. जरा मरण मोक्षाय माम श्रित यतंती. इंटेलिजेंट पर्संस हु आर एंडेवरिंग फॉर लिबरेशन फ्रॉम ओल्ड एज एंड डेथ टेक रिफ्यूज इन मी इन डिवोशनल सर्विस. तो जो जरा मरण, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मोक्षाय, तो जो बुढ़ापे से और मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं वो मेरे आश्रय में आते हैं और भक्ति में सेवा को ग्रहण करते हैं. तो ये शुद्ध भक्ति है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. बुढ़ापा ना हो, मृत्यु ना हो, और
जैसे वो भक्ति का सामान
और कोई आंसर? नहीं, ये तो इसकी बात हो रही कि मेरा आश्रय लेना है, वो भगवान का आश्रय सही में आश्रय ले रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं जो सही में आश्रय ले। मायावादी तो रूप को मानते ही नहीं, वो तो सही में आश्रय लेते ही नहीं। इस एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि मायावादी ने आश्रय लिया है जन्म मन से निकलने के लिए, लेकिन वास्तविक आश्रय नहीं। तो ये श्लोक शुद्ध भक्ति को इंडिकेट भी करता है, नहीं भी करता, दोनों ही इंडिकेट नहीं करता है। क्यों? वही कि जरा मरण मोक्ष है, उनको इच्छा है जन्म मृत्यु से निकलने, लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? ना धनम ना जनम ना सुंदरम कविता वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनेश्वरे अवतार भक्ति अहितु की। तो क्या क्या नहीं चाहिए? ना धनम, ना धन की अभिलाषा है, ना धनम ना जनम, जनम मतलब फॉलोअर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, ना धन ना जन्म ना सुंदरी, सुंदर स्त्री है ना, स्त्री के लिए पुरुष, ना सुंदरी कविता प्रेस, कोई हमारी बड़ाई करे प्रशंसा करे ना। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे अवतार भक्त, मैं जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति करता रहूं। तो एक तरह से इस शुद्ध भक्ति का श्लोक नहीं है, है ना। तो फिर हमको जैसे हम प्रारंभ में भक्ति में आते हैं और भौतिक जगत में बहुत सारे दुख हैं, या हमें आसपास के लोगों से बहुत सारे दुख मिल रहे हैं, और हम जब शिक्षा अटेंड करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि चार तरह के दुख होते हैं, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, फिर आध्यात्मिक क्लेश, आधि भौतिक क्लेश, आधि दैवी क्लेश, है ना। तो इस संसार में सुख है ही नहीं। इस तरह से हम पहले सेशन में ये निष्कर्ष लेके आते हैं, पहले सेशन का नाम होता है सुख की खोज, लेकिन हम लेके आते हैं किस पर कि संसार में तो दुखी है, दुखाले व शाश्वतम, भगवान ने बोला है दुखाले व शाश्वतम, ये दुख का घर है, यहाँ सुख तो मिलेगा ही नहीं, है ना। तो जब हम समझे कि ये मम जन्मनी जन्म के बार बार मेरे जन्म होते रहे और मैं आयतों की भक्ति में लगा रहा हूं, तो करने की इच्छा कैसे होगी फिर, है ना। अभी तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ दुख बहुत है, चार तरह के क्लेश हैं, मतलब चार तरह के दुख हैं और तीन तरह के क्लेश हैं, यहाँ दुखालय में और दुख का घर, तो इनसे निकलना है तब आपको वास्तविक सुख प्राप्त होगा। ये हमने पहले लेक्चर में सुना, और जब कुछ समय बीत गया तो हमने सुना कि जन्म मृत्यु से निकलने की इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, मिश्रित भक्ति, अशुद्ध भक्ति। तो हमें भक्ति करने की प्रेरणा कैसे मिलेगी फिर, तो किस, अभी मोटिवेशन तो ये है ना कि दुख से निकलना है और नित्य सुख प्राप्त करना है, लेकिन अभी पता चला कि अगर दुख से निकलने की भी इच्छा है तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है, तो फिर हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? ऐसा होता है क्योंकि जब हम शुरुआत में भक्तों के संग में होते हैं तो बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत दुख है ना, और जब भक्तों के संग में आते हैं तो साफ सफाई है, सतुगुण में रहते हैं, जो लाइफ स्टाइल है वो भी रेगुलेट हो चुकी है, तो इतने हमको दुख सताते नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, एक स्थिति में आकर रुक जाते हैं, है ना। जो उत्साह हमको जब शुरू में था, जब हमको पहली बार हमने कीर्तन सुना या पहली बार लेक्चर अटेंड किया या पहली बार मंदिर आए, तो उस समय जो उत्साह था आज वो उत्साह नहीं हो पा रहा, तो ऐसा क्या चीज हो गया, जबकि उत्साह समय के साथ बढ़ना चाहिए। तो जब हमको शुरू में उत्साह कैसे मिल रहा था कि संसार में जो हम रह रहे हैं जिनके साथ में, वो सिचुएशन कैसा है, बहुत दुख भरा है, और यहाँ आते हैं तो प्रसाद लेते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, है ना। जब फिलोसफी सुनते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो इतना अच्छा फिलोसफी तो सुनने को नहीं मिला, तो हमें क्या होता है, एक आनंद प्राप्त होता है। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है, जब शुरू में हमको सेवा मिली कि आपको सेवा करना है मंदिर में, है ना, या कुछ सामान लेके आना है, तो बहुत उत्साह होता है, यस सेवा करना है, करना है, करना है, यस करना है, एक क्योंकि वो आनंद प्राप्त होता है ना, वो सेवा के आत्मक स्तर पर, शरीर के स्तर पर नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद वो एक रीडिंग है या वो सेवा है या वो मंदिर है या वो कीर्तन है, वो क्या लगता रहता है, एक जैसा लगने लगता है। हमें लगता है कि एक जगह आके हम अटक गए, तो फिर हमको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? क्योंकि अभी वो बता दिया कि दुख से निकलने के लिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें भी क्या है, मिश्रण है, वो भी क्या है, मिश्रित भक्ति, और शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे कुंती महारानी बोलती है ना, विविधा संतुता सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु, है ना, कि मुझे बार बार विविधाएं आए, है ना, भवतो दर्शनम यत सात अपुनर्भव दर्शनम, है ना, कि बार बार दुख आएंगे तो आप बार बार बचाने आएंगे, बार बार बचाने आएंगे तो आपके बार बार दर्शन होंगे, और बार बार आपके दर्शन होंगे तो इस जन्म मृत्यु के दर्शन ही होंगे। तो फिर कैसे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? कॉन्स्टेंटली हमेशा प्रयास करते रहें, बिना एक जगह आके अटक गए, है ना, उससे निकल नहीं पा रहे, तो क्या उसका उपाय क्या है, कैसे उस स्थिति से अपने आप को कैसे निकालें? इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि रजोगुण और तमोगुण से डेंजरस क्या है सतोगुण, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण से समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, मैं ज्यादा सो गया तो क्या लगेगा, तो यार थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। रजोगुण में बहुत भौतिक इच्छा आ रही तो हम समझ जाएंगे कुछ कंट्रोल करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है, लेकिन सतोगुण में पहुंच गए, हमें लग रहा है सब अच्छा चल रहा है, सब भक्ति अच्छी है, सब सुलामाला हो रही है, लेकिन अपने आप को जो पुश करना है ना, अपने जो इस स्थिति से निकलना है और प्रयास करना है, तो वो नहीं आता, वो सतोगुण में फंस जाते हैं। तो कैसे निकले, वो मोटिवेशन कहाँ से आए? विवेक इंद्रा को सुनने से कैसे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? क्योंकि अगर हम दुख से निकल कर करना चाह रहे हैं तो दुख तो अभी इतने दुख तो नहीं है, इतने ऐसा कोई दुख तो बहुत ज्यादा सता नहीं रहे, तो कैसे निकले उस कॉम्प्लेसेंसी से? अगर हम खुद अपने आप को धक्का नहीं मार सकते तो दूसरे हमको धक्का मारे, ये भी है डिवोटी एसोसिएशन से, हमको कोई धक्का मारने वाला है, और कोई और को कैसे? गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा, यस, तो हमको पता होना चाहिए गुरु की क्या इच्छा है, गुरु की इच्छा वही है जो प्रश्न की इच्छा है, और भगवान की शिक्षाओं को सीरियसली, सेवाओं को सीरियसली लेना, सेवा के लिए तत्पर रहना। नहीं तत्पर तो है, लेकिन अभी क्या है, बस जितना हो गया बस ठीक है, अभी सब कर तो रहे हैं अच्छी तरह, सब अच्छा तो चल रहा है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारा अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, भक्ति में आने का अल्टीमेट हमारा जो पर्पस क्या है, वो क्या है, एक शांति सुखमय जीवन प्राप्त करना है कि भगवत धाम जाना है? अगर इस समय हमारी मृत्यु हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसे चाणक्य पंडित क्या बोलते हैं, स्मरण स्मरण अनित्य नित्यता, कि हमेशा इस चीज का स्मरण करना चाहिए कि हर चीज यहां पर अनित्य है, नित्य रूप से इस चीज का चिंतन करते रहो कि यहां पर हर चीज अनित्य है, नित्य रूप से स्मरण करना, जो भी चीज यहां टेम्परेरी है। तो हम वास्तव में किस उद्देश्य से भक्ति में आए? शुरुआत में हो सकता है कुछ बहुत दुख है तो इसीलिए आए, लेकिन अगर उसको फाइन ट्यून नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेसेंसी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई जहाज से चल रहा है, जैसे श्रील प्रभुपाद जलदूत से गए, है ना, कलकत्ता से न्यूयॉर्क, ऐसे कोई सागर में जा रहा है बहुत लंबा, उसने यात्रा चालू कर दिया और भारत छोड़ दिया, अभी जो समुद्र है उसको जितना जाना है, जितना किलोमीटर है, वो कितना है, करीब 2000 किलोमीटर है, और उसने जहाज से तय कर लिया 20 किलोमीटर। तो एक उसको अगर वो सोचे, देखो मैं कितना सारा पार कर लिया, अपने पीछे देखे कि 20 किलोमीटर आगे आ गया, देखो कितना आगे आ गया, तो ठीक है अभी तो क्या होगा, वो आगे नहीं देख रहा, वो जो आगे गोल है उसका वो नहीं देख रहा, वो पीछे देख रहा है। तो हम कॉम्प्लेसेंट क्यों जाते हैं, हम पीछे देखते हैं, आगे देखते नहीं, हम पीछे देख रहे हैं। हाँ दुख थे, समस्याएं थी, या फ्रेंड ऐसे परेशान कर रहे थे, और ये था वो, अभी ठीक है, अभी हम आगे भूल ही गए कि आगे तो 1980 किलोमीटर बाकी है, अभी अभी तो बहुत चल रहा है। यहाँ अपनी तुलना किससे करते हैं, कि जो भक्ति में अभी नए हैं उनसे तुलना करते हैं, उनसे तो मैं अच्छे कर रहा हूँ, उनसे तो श्रेष्ठ ही हूँ, लेकिन हमें अच्छी तुलना तो कर ही नहीं सकते। जैसे गोस्वामीगण है, अभी जो गोस्वामीगण का स्तर है और जो हम साधक भक्त हैं उनका स्तर है, तो उसमें क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। तो हम तुलना किससे कर रहे हैं कि हमने 20 किलोमीटर आगे चल दिए, हम ये नहीं देख रहे कि हमें इतना आगे चलना है, या हम तुलना किससे कर रहे हैं जो अभी भक्ति में नया है उससे तुलना कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए रोल मॉडल कौन है, षड गोस्वामी या गुरु परंपरा। तो वो जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं दिन रात सुबह शाम, वहां तक हम पहुंचे हैं, अगर हमको एक टाइम प्रसाद नहीं मिले तो क्या होगा, सारी सारी फिलॉसफी, सारा जप वहीं रह जाएगा। तो कितने हम अपने इंद्रियों के गुलाम हैं। तो हमें अपने गोल को क्या है, फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा कि आज मैं जिस स्थिति पर हूं, अगर आज मेरी मृत्यु हो गई तो मैं कहां जाऊं, है ना, उस चीज का, अनित्य चीजों का मैं स्मरण करना। तो हम कभी ढीले नहीं पड़ेंगे, ठीक है, अपने आप को क्या करते रहेंगे, पुश और करना, और करना, और करना। इतने सारे शास्त्र हैं, उनको रियलाइज करना कि पढ़ना नहीं है, उनका स्टडी करना, कि वो रीडिंग नहीं करना, स्टडी तो अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब स्टैंड अंडर, किसी के अंडरस्टैंड क्या हुआ, खड़े किसके अंडर, शास्त्रों के अंडर, गुरु के अंडर में जब खड़े हैं तो अंडरस्टैंड हुआ, नहीं तो कितने भी हमने शास्त्र पढ़ लिए लेकिन उसका मर्म नहीं समझ पाए। तो शास्त्रों को रियलाइज करना है, इतनी सारी सेवाएं हैं, तो कहने का मतलब क्या है, हमें आगे देखना, अभी तो हम बहुत पीछे हैं, है ना। गोस्वामीगण हैं और 2 दिन में थोड़ा सा छास ले रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैं भोग कर रहा हूँ, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी मुश्किल से आधे घंटे या 1 घंटे सो रहे हैं, हम आधे 1 घंटे की तो नैप होती है हमारी। तो एक्चुअली ये इम्पॉसिबल नहीं है। महाराज का कुछ दिन पहले कोट आया कि महात्मा गांधी है या नेपोलियन है वो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे, मतलब खाने और सोने में। नेपोलियन जो था कब सोता था, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में घोड़े पर जाता था तब सोता था, घोड़े पर सोता था, वैसे सोते ही नहीं था। टाइम बचाता था क्योंकि उसको रूल करना है, पूरा यूरोप जीतना है। तो अगर कोई भौतिक चीजों के लिए भी इतना बहुत प्रयास करे, पूरा उसमें डूब जाए, तो हम देखते हैं उसकी भी नींद और खाना सब कुछ कम हो जाता है ना। जब किसी का प्रेम होता है किसी से, है ना, तो बहुत सारे गाने बनते हैं ना, रात में नींद नहीं आती, चैन नहीं आता है। तो भौतिक स्तर पर अगर हम किसी चीज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जैसे वैज्ञानिक हैं ये प्रेमी प्रेमिका है, तो उनका भी खाना, उनका भी सोना कम हो जाता है, क्योंकि अभी वो मेंटल प्लेटफॉर्म पे है या इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे है। तो जो मेंटल प्लेटफॉर्म पर है, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, उसकी भी शरीर की आवश्यकताएं कम हो गई, तो जो बॉडी सोल के प्लेटफॉर्म पे आएगा उसका क्या होगा, वो तो उसकी तो आवश्यकता और भी कम हो जाएगी। तो हमें समझना है कि हम अभी हमारी क्या स्थिति है ना। हम देखते हैं कोटा में, कोटा में लोग पढ़ने जाते हैं, कोटा में जहाँ मैं रहता था पास में एक लड़का था, तो ऑलमोस्ट 8-9 महीने 2-3 घंटे सोता था बस, पूरे दिन पढ़ाई 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 पढ़ाई, तो कैसे कर पाया, उसका शरीर कैसे चल पाता, खाना भी बस जल्दी जल्दी खाया, बस खा रहा है तो पास में बुक रखी है, ब्रश कर रहा है तो सामने वो लिखा हुआ है, ऐसे हम ऐसे उस समय करते थे, ब्रश कर रहे हैं तो कुछ लिख लिया, कुछ फॉर्मूले लिख दिए मैथ्स के या फिजिक्स के, ऐसे तो कैसे कर पाते, तो मेंटल इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पर है ना, बुद्धि से उनका आनंद प्राप्त हो रहा है, हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाया है ना, कुछ सॉल्यूशन आया, तो एक बुद्धि को क्या मिला, एक आनंद मिला, तो वो आनंद को खींच रहा है खींच रहा है, उससे उनकी नींद भी कम हो गई भूख भी कम हो गई, तो अभी हम उस स्तर पर हैं, वहां पर आए नहीं आए। और तो जरा मरण मोक्षाय है ना, तो जन्म मृत्यु से निकलने के लिए भक्ति नहीं करना, लेकिन आचार्यगण बताते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो जन्म मृत्यु से निकलना एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है, तो भगवान ऐसे लोगों को आकर्षित करने के लिए श्लोक बोल रहे हैं जो दुख से निकलना चाहते हैं ना, जन्म मृत्यु से निकलना चाहते हैं, लेकिन आएंगे भगवान की शरण में आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो जिस मोटिवेशन से आए थे वो मोटिवेशन चेंज हो जाएगा, तो ये शुद्ध भक्ति के लिए भी है और शुद्ध भक्ति के लिए नहीं भी है इसमें। तो ये खासकर जैसे हम देखते हैं रामायण में, जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माँ की खोज करते हुए आते हैं किष्किंधा क्षेत्र में, है ना, तो उनका भेंट होता है हनुमान जी से, सुग्रीव उनसे भेंट होता है, और उनसे बताते हैं, सुग्रीव बताते हैं कि ऐसे जो मेरा भाई है पाली, उसने पूरा राज हड़प लिया है, और मेरी पत्नी को भी मतलब अपने अंडर में रख लिया है, तो मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है, तो आप मेरी मदद कीजिए, और जब मुझे राज्य मिल जाएगा और बहुत सारी जब वानर सेना आ जाएगी तो मैं आपकी मदद करूंगा, है तो भगवान तैयार होते हैं, भगवान बोलते हैं ठीक है, तो बाली से बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है पता है सबको, कि कैसे भगवान बाली को मारते हैं और सुग्रीव को राज्य मिल जाता है और उसकी पत्नी भी वापस आ जाती है, तो जब उसको पूरा ऐश्वर्य मिल जाता है, पत्नी मिल जाती है ना, तो वो भूल जाते हैं कि मैंने भगवान राम को कुछ वचन दिया था, तो चतुर्मास लग जाता है उस समय, तो 4 महीने हो गए, सुग्रीव की तरफ से कुछ नहीं आया कि अभी क्या करना है, तो लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता है कि सुग्रीव ने हमारे बीच में ऐसा समझौता वो बात हुआ था कि हम सुग्रीव की मदद करेंगे, फिर बाद में वानर सेना से, किसी भगवान को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, तो ये बताता है कॉम्प्लेसेंसी है ना, कि जब दुख था परेशानी था तो भगवान की शरण लिया, लेना अच्छा है दुख में और कहीं जाना, उससे अच्छा तो भगवान की शरण लेना है, लेकिन जब वो दुख चला गया एक तरह ऊपर तरह से ऐश्वर्य आ गया, पत्नी वापस आ गई, तो सुग्रीव क्या है, वो जो उद्देश्य था भगवान की सेवा करना वो भूल गए, तो इस तरह से वो क्या आ गई, कॉम्प्लेसेंसी आ गई, तो बाद में फिर लक्ष्मण जी जाते हैं और उनको फिर बता क्रोध व्यक्त करते हैं और फिर वो सुग्रीव में क्षमा मांगते हैं कि उस, तो इस वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारा उद्देश्य था भगवान की शरण में शरण लेने का या भक्ति में आने का, दुख से निकलना ये एक सात्विक जीवन जीना, वो मिल गया हमको तो हम भूल गए कि अल्टीमेटली हम किस लिए आए, वो ऐश्वर्य मिलना या पत्नी वापस आना वो उद्देश्य नहीं था, सुख उद्देश्य क्या था कि वानर सेना जाए और लंका पर चढ़ाई करे, तो इसी तरह हमको इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न?
जैसे भागवत में 8th कैंटो में आता है समुद्र मंथन के बारे में, इसमें जैसे बलि महाराज और उनके बहुत सारे साथी नासी वगैरह ये रहते हैं, तो ये देवता के साथ युद्ध करते हैं, तो बलि महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको तो ऐसा पता होना चाहिए कि लड़ाई वगैरह ये सब इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, और देवता भी भगवान के शुद्ध भक्त मतलब शुद्ध भक्त नहीं है अपने देवता भी, फिर भी लड़ाई झगड़े करते हैं आपस में।
तो बलि महाराज शुद्ध भक्त हैं तो उनको इस तरह से असुरों के पक्ष में नहीं होना चाहिए, ये देवता भी कुछ तरह के भक्त हैं मिश्रित भक्त हैं उनको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, देवता मिश्रित भक्त हैं अधिकतर, तो मिश्रित भक्त हैं तो कहीं ना कहीं तो भोग की इच्छा है और एक कंट्रोलशिप की भावना है कि मेरा राज्य है इंद्र है या अलग अलग देवी देवताओं को, तो मेरा राज्य चला जाएगा तो मेरा भोग कम हो जाएगा, इसकी वजह से वो झगड़ा करते हैं, लड़ाई का स्पिरिट होता है। बलि महाराज शुद्ध भक्त हैं लेकिन कभी कभी शुद्ध भक्त भी इस तरह से व्यवहार करते हैं, ऐसा लग रहा है कि असुरों को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वृत्तासुर, तो वृत्तासुर तो असुर की योनि में है, इंद्र से युद्ध लड़ रहे हैं, तो ऊपरी तौर से लग रहा है कि असुर हैं और देवता से लड़ रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से क्या है, भक्त है। जैसे भीष्म पितामह है तो भीष्म पितामह शुद्ध भक्त है, महाजन है, 12 महाजन में से एक है, लेकिन दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, लेकिन दुर्योधन का साथ देने से वो जो उनकी शुद्ध भक्ति है वो कम नहीं हुआ उसमें, तब भी शुद्ध भक्त है। तो उसी तरह बलि महाराज है, तो भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को अलग अलग जगह भेजते हैं, कभी देवताओं के परिवार में, कभी असुरों के परिवार में, है ना, कभी बानरों के परिवार में, ऐसे शुद्ध भक्तों को अलग अलग जगह भेजते हैं, ये बताने के लिए कि आप भौतिक रूप से किसी भी जगह आपका जन्म हुआ हो लेकिन आप शुद्ध भक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। अगर सारे भक्त केवल शुद्ध भक्त के परिवार में पैदा हुए या जिनमें दैवी गुण है उनके परिवार में पैदा हुए तो फिर बाकी लोगों को समझाने के लिए सिखाने के लिए कैसे हो। इसलिए भगवान हर कोई भी कास्ट है, कोई भी जगह है, कोई परिवार, हर जगह अपने भक्तों को भेजते हैं, जिससे अगर कोई असुर भी है तो वही भक्त बन। प्रहलाद महाराज, कोई बोल सकता है कि प्रहलाद महाराज तो इतने महान भक्त है तो हिरण्यकशिपु के पुत्र कैसे बने, तो इस तरह से हम हर चीज लॉजिक से नहीं समझ सकते। भगवान की योजना है, भगवान हर वैरायटी के लोगों से कहीं भी पैदा हो वो शुद्ध भक्त बन सकता है, ये दिखाना चाहते। किस तरह से
मतलब उनको कोई समझ नहीं सकता है, कोई यदि समझने का प्रयास करे तो ऐसे समझ नहीं सकता।
वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाए, वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है वो विज्ञान बुझाए, विज्ञान मतलब विद्वान भी नहीं समझ सकता है। समझने के लिए हमको उस स्तर पे आना, जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर अच्छा है बढ़िया है कैसे समझ आएगा, जब वो खुद दूसरे वाला डॉक्टर हो तो कंपेयर कर पाएगा। यस, ये किसी फील्ड का नॉलेज चाहिए है, फील्ड में वो कैसा है तो उस फील्ड में हमको जाना पड़ेगा। तो भक्तों की अगर एक्टिविटी जानना है तो हमें हमारा भी एक स्तर का शुद्धिकरण होना चाहिए, तब हम भक्तों को जान पाएंगे, नहीं तो हम उनको भी मिसअंडरस्टैंड करेंगे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जैसे भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, उसी तरह जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके भी जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। हरे कृष्ण। वहां से कोई प्रश्न?